ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरे यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम्। श्रीमद् भागवत के षष्ठ स्कंध के दूसरे अध्याय का श्लोक क्रमांक 8। एतेनैव ह्यघुनस्य कृतं स्यादघनिष्कृतं यदा नारायण एते जगाद चतुरक्षरम्। एतेना इस कीर्तन से एवा निसंदेह ही निश्चय ही अघुनः पाप पूर्ण फलों वाला अस्य इस अजामिल का कृतम किया हुआ स्यात् है अघ पाप निष्कृतम पूर्ण प्रायश्चित यदा जब नारायण हे नारायण आय कृपया आइए इति इस प्रकार जगाद उच्चारण किया चतुः अक्षरम चार अक्षर ना रा या ना नारायण। अनुवाद एवं तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। विष्णु दूतों ने आगे कहा, यहां तक कि पहले भी खाते समय तथा अन्य अवसरों पर यह अजामिल अपने पुत्रों को ये कहकर पुकारा करता, हे प्रिय नारायण यहाँ आओ। यद्यपि वह अपने पुत्र का नाम पुकारता था, फिर भी वह नाराय तथा अण इन चार अक्षरों का उच्चारण करता था। इस प्रकार केवल नारायण नाम का उच्चारण करने से उसने लाखों जन्मों के पापपूर्ण फलों के लिए पर्याप्त प्रायश्चित कर लिया है। पहले जब अजामिल अपने परिवार के पालन हेतु पाप कर्म में लगा रहता तो वह नारायण का नाम निरपराध होकर लेता था, पाप भी करता था नाम भी लेता था, लेकिन निरपराध होकर लेता था। केवल अपने पाप कर्मों के निवारणार्थ भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना या पवित्र नाम के कीर्तन के बल पर पाप कर्म करना ये अपराधमय है। नामनो ही बलाद्यस्य ही पाप बुद्धि ही। यद्यपि अजामिल पाप कर्मों में लगा रहता था, परंतु इनके निवारणार्थ उसने कभी भी नारायण के पवित्र नाम का कीर्तन नहीं किया। यही निरपराध भाव था अजामिल का। वो अपने पुत्र को बुलाने के लिए नारायण का नाम लिया करता था, अपने बेटे का नाम रखा था नारायण, सबसे छोटा वाला था, इसलिए उसका कीर्तन प्रभाव उत्पादक था। इसी तरह से नारायण के पवित्र नाम का कीर्तन करने से वह अनेक अनेक जीवनों के संचित पापमय फलों को पहले ही विनष्ट कर चुका था। प्रारंभ में वह पवित्र था, किंतु बाद में चाहे उसने अनेक पाप कर्म किए, फिर भी वह अपराध रहित था, क्योंकि उसने उनके निवारणार्थ कभी नारायण के पवित्र नाम का कीर्तन नहीं किया था। प्रभुपाद जी ने एक ही बात को तीन बार यहाँ कह दिया है ना, पहले, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, नहीं किया था। जो व्यक्ति बिना अपराध के भगवान नाम का सदैव कीर्तन करता है वह सदैव पवित्र रहता है। जैसा कि इसी श्लोक में पुष्टि हुई है, अजामिल पहले से निष्पाप था, क्योंकि वह नारायण के नाम का उच्चारण करता था, अतएव वह निष्पाप बना रहा। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ा कि वो अपने पुत्र को बुलाता था, नाम स्वयं में प्रभावकारी था। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अखिल रस सिंधु दीनबंधु दया सिंधु भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु रास रासेश्वर राज राजेश्वर गोपी प्राण धन नंदन नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र की महती कृपा करुणा से ग्रंथराज श्रीमद् भागवत के आश्रय में जीवन का सर्वोच्च लाभ भगवत सेवा भगवत प्रेम प्राप्ति अर्थम हम आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, यह हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। विगत कई दिनों से हम सभी इसी प्रसंग का श्रवण कीर्तन करते आ रहे हैं। भागवत के अनेक प्रसंग हैं, उनमें से एक प्रसंग यह है अजामिल उपाख्यान। छठे स्कंध के प्रारंभ में तीन अध्यायों में इस उपाख्यान का वर्णन आया है। विशेष बात क्या है इसमें? विशेष बात यह है कि अजामिलो मनुष्यसु महापापी यथाविदः। भगवान इतने कृपालु है, इतने दयालु है, इस मनुष्य लोक में अजामिल जैसा महापापी का उद्धार उन्होंने किया है, यही उनकी कृपा का परिचय है। सामान्य जनों का पालन भगवान करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। माँ पिता अपने बच्चों का पालन अपने बच्चों की देखरेख तो करते ही हैं, लेकिन ये विकट परिस्थिति में जब कोई पाप से बिल्कुल लबालब भरा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति का उद्धार भगवान का नाम करता है, और वो भी उन्होंने नाम पाप से बचने के लिए नहीं लिया, अपने पुत्र के हिसाब से लिया, पुत्र के नाम के भाव से लिया, नारायण यहां आओ। ये कथा दोहराने की आवश्यकता नहीं है, जितने लोग आए हैं यहाँ प्रथम अध्याय से लेकर दूसरे अध्याय के सातवें श्लोक तक सबने सबने अजा मिल के पूरी घटना कही, पूरा वृत्तांत बताया। हम समझते कि फिर पुनरावृत्ति की कोई आवश्यकता नहीं, सब जानते हैं अजामिल कौन था। सो निश्चित रूप से ये घटना हम सबके लिए प्रेरणादायक होगी। इस श्लोक में हमें भगवान की अतिशय कृपा का दर्शन हो रहा है, इतने कृपालु, उनको आना नहीं पड़ता, उनका नाम इतने कृपालु है जो पापी से बड़े पापी का भी उद्धार करने में समर्थ है। ये भगवान की विशेष कृपा है, नाम की कृपा, भगवान की कृपा, नाम की कृपा एक ही बात है। यहां विष्णुदूत और यमदूत ये दोनों का वार्तालाप हो रहा है। कौन साक्षी है? साक्षी कौन है? हाँ? अजामिल। अजामिल ने तो नहीं बताई ये बात, साक्षी केवल एक ही व्यक्ति है इसका, वो है अजामिल। और वो अंतर दुनिया में, वो भीतरी लोक जो है, उस लोक के वो सब घटनाक्रम को अजामिल देख रहा था। वहां हम सबका प्रवेश नहीं है। यमदूत कैसे आए, विष्णुदूत कैसे आए, दोनों का वार्तालाप किन शब्दों में, कितनी धीमी, कितनी ऊंचे स्वर में हुई हुआ, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। कोई कहेगा कि जब विष्णुदूत और यमदूतों का वार्तालाप हो रहा था, हम वहां खड़े होकर के इस कथा का साक्ष्य बनकर सुन रहे थे, कोई कहेगा? आप सुन रहे थे? कोई नहीं सुन रहा, ना सुन पाएगा। पर एक व्यक्ति ने सुना, कौन है वो? हाँ, अजामिल तो कह नहीं पाएगा इधर। किसने कहा? वेदव्यास जी महाराज। वेदव्यास जी महाराज समाधि भाव में ये पूरी घटना को विजुअलाइज कर रहे थे, वो इस घटनाक्रम के साक्षी है। जैसे कुछ दिन पहले अपने सुना, ब्रह्मा जी की कृपा से राम जी की जैसी जैसी लीला वाल्मीकि जी ने प्रत्यक्ष अनुभव किया, हसितम भासितम चैव, जैसे राम हंसते थे, जैसे राम बोलते थे, जैसे दशरथ कहते थे, जैसे कैकेयी कहती थी, बिल्कुल यथायथ यथानुरूप वाल्मीकि जी ने प्रत्यक्ष कृत किया। वैसे इस घटनाक्रम का प्रत्यक्षकरण वेदव्यास महाराज कर रहे हैं, वो दिव्य भाव में, चतुर्थ दशा में। सो विष्णु दूतों का ये उपाख्यान तब तक व्यक्ति के पास प्रत्यक्षकरण नहीं होगा जब वो तूर्य दशा तक नहीं पहुंच जाएगा। ये दूर नगरी वाली बात है, पर जैसा भी हो, वेदव्यास की कृपा से यह घटनाक्रम हमारे सामने है। यह घटनाक्रम सत्य है, क्योंकि करामलगवत जो तीनों काल को अतिक्रमण करके दिव्य सच्चिदानंद पद पर अवस्थित हो जाते हैं, उनके लिए तीनों काल वर्तमानवत प्रतीत होते हैं। भूत, वर्तमान, भविष्यत उनके पास कोई अर्थ नहीं रखता, प्रत्येक घटनाक्रम वर्तमान जैसे ही उनको लगता है। सो वेदव्यास जी महाराज की कृपा से ये घटनाक्रम हमारे सामने है। वार्ता करने वाला कौन कौन है? बोले भगवान जो विश्व के मालिक है, उनके दास, और उनके दास के जो दास हैं, उनके अंदर जो वार्तालाप, एक महाभक्तों के दास यमराज के दास, और एक साक्षात श्रीहरि के दास, दोनों के बीच का, दोनों के मध्य का ये वार्तालाप है। वार्तालाप किस लिए हुआ आप सब जानते हैं। एक पक्ष अजामिल को लेना चाहता था, और एक पक्ष उनको छोड़ना नहीं चाहता था। पर ऐसा तो नहीं होगा बलपूर्वक छीन करके ले जाए, ये तो बहुत ही गुंडागर्दी हो जाएगी। पर विष्णुलोक के लोग जो हैं वो इस तरह से असभ्य कर्म नहीं क्या करते, वो समझाने का प्रयत्न करते हैं। देखो तुम इनको लेने आए हो, बिल्कुल अनुचित कार्य कर रहे हो। मान लीजिए यमदूत पूछेंगे कि क्यों तुम अनुचित कह रहे हो, तब ये विष्णुदूत कहते हैं नहीं, आप लेने आते हो उन्हीं व्यक्तियों को जिनके भीतर पाप कर्म होते हैं, अब तक उन्होंने प्रायश्चित नहीं किया है और वहां उस लोक में नरक लोक में जाकर वो दंड भोगेंगे। दंडेन शुद्ध्यन्ति नराः, दंड के द्वारा वो शोधन होंगे, फिर नाना योनियों में वो जाएंगे। परंतु इनके घटना इन इस केस में अजामिल तो बिल्कुल शुद्ध है। अच्छा, यमदूतों ने पूछा कि ये कैसे शुद्ध हो गया, ना अभी सुना नहीं अपने इन्होंने नारायण नाम लिया, तो उन्होंने कहा हां बिल्कुल हमने सुना कि इन्होंने नारायण नाम लिया, चिल्ला करके लिया, बस इतना ही काफी था। तो इन्होंने कहा प्रायश्चित करने के लिए व्यक्ति को संकल्प करना होता है। श्री सुखदेव गोस्वामी सबसे पहले कहते हैं छोटे बड़े कर्मों के लिए, छोटे बड़े पापों के लिए छोटे बड़े प्रायश्चित करना चाहिए। जो व्यक्ति मृत्यु से पहले प्रायश्चित कर लेता है फिर उनको नरक लोगों का दुख भोगना नहीं पड़ता। जैसे कोई डॉक्टर होता है छोटे रोग के लिए छोटी दवा देता है और बड़ी बीमारी के लिए बहुत ज्यादा उपचार कराता है उसी प्रकार जो अच्छा आदमी होता है छोटे पाप के लिए छोटा प्रायश्चित, बड़े कर्मों के लिए बड़े पाप के लिए बड़ा प्रायश्चित कर ले। लेकिन ये अजामिल अपने एक जन्म नहीं कोटि जन्म के जितने पाप थे उसने जला डाला है। तो यमदूतों ने कहा इसने प्रायश्चित के लक्ष्य से नाम नहीं लिया। बोले किस लक्ष्य से लिया, बोले इन्होंने अपने पुत्र के भाव से नाम लिया, अपने पुत्र को बुलाया नारायणाय नारायण आय। यहां पर नारायणाय चतुर्थी विभक्ति नहीं है, वो यहां एक तो संधि करते हैं नारायण आय, अने हे नारायण तुम मेरे पास आओ, बस इतना सा कहा। पुत्रोपचारितम, अपने पुत्र को बुलाया, इसी से उनका सारा पाप मिट गया। कैसे मिट गया, एक बात मित्रों ध्यान पूर्वक सुनिए। भारत का संविधान ये पाप ये पुण्य ये निर्णय नहीं कर सकता, हमारा शास्त्र निर्णय करेगा इदम पापम इदम पुण्यम। एक कर्म एक के लिए पाप हो सकता है और एक कर्म एक के लिए पुण्य हो सकता है, वही कर्म सेम कर्म, बिल्कुल वही कर्म एक के लिए पाप एक के लिए पुण्य। धन संग्रह करना गृहस्थियों के लिए बहुत आवश्यक है, पर धन संग्रह करना सन्यासियों के लिए महापाप है। एक ही कर्म है, अग्नि जलाना गृहस्थियों के लिए महापुण्यकर कर्म है, लेकिन अग्नि जलाना सन्यासी के लिए महापाप है, माने भोजन आदि पकाना महापाप है, वही कर्म है। तो शास्त्र ये निर्णय करते हैं कि इदम पापम इदम पुण्यम। जरा विचार करके देखो, यदि शास्त्र निर्णय करते हैं कि ये पाप है ये पुण्य है, तो वही शास्त्र निर्णय करेंगे ये पुण्य का ये पाप का उपचार भी क्या है। पर इन शास्त्रों के इन गूढ़ बातों को बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, इसलिए कभी कभी खूब भटकते हैं। पर हम लोग बड़े भाग्यशाली है, भागवत महाशास्त्र का आश्रय करके हम यहां विराजमान हुए हैं। जिस शास्त्र के ये गूढ़ बातें ये गूढ़ रहस्य अजामिल के उपाख्यान के माध्यम से उन्मोचित हो रहा है, ये उद्घाटित हो रहा है कि नाम जो दो अक्षर हम ले रहे हैं हरि राम कृष्ण, इसमें ताकत कितनी है। वो कहते हैं नाम लेना तो दूर की बात है, नामाभास मात्र से ही सारे पापों का निवारण हो जाता है, यही विष्णु दूतों का प्रवचन है। एतेन माने बस इतना ही कहा, क्या कहा, नारायण चतुर अक्षरम। विष्णु दूत कहते चार अक्षर तो कह दिया, बहुत ज्यादा कह दिया, दो भी कह देता तब भी काम चल जाता, केवल नारा कह देता और इतने में उसके प्राण चले जाते तब भी विमान आ जाता, अथवा नारा ना कर केवल ना ही कह देता तब भी काम बन जाता। ना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन उस भाव में यदि ना भी कह देता, श्री चैतन्य महाप्रभु पूरे जगन्नाथ शब्द नहीं कह पाते थे, महाभाव की दशा में वो जज जज गग गग गाया करते थे, बिल्कुल नहीं गा पाते थे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भव तुम्हें। तो यहां विष्णुदेव तो कहते हैं कि नारायण इति चतुराक्षरम, यदा नारायण इति जगाद चतुराक्षरम, चार नाम चार अक्षर बहुत ज्यादा हो गया जी, एक दो कह देते तब भी काम बन जाता। बोले कब? अभी तो सुना। बोले नहीं नहीं, ये निष्पाप तब से हो चुका है जब इनका बेटा पैदा हुआ। बोला कैसे जी? बोले जब इनका बेटा पैदा हुआ और इन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा नारायण, बस उसी समय ये पवित्र हो गया। आप भी भक्त लोगों को ध्यान रखिए, ये ऐसा नहीं कि ये अभी पवित्र हुआ जिस समय मरने समय ये कह रहा है, ना 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 ना। चक्रवर्ती कहते हैं अरे मूर्खों तुमको पता नहीं है कब ये पवित्र हुआ, न जानी था, तुम जानते नहीं हो। बोले कब कब पवित्र हुआ? बोले जब इनका पुत्र नारायण हुआ और इन्होंने नामकरण संस्कार में इनका नाम रखा नारायण, और जब मां उनको गोद में लेकर के खिलाती थी तो पिता अजामिल को बड़ा आग्रह होता था कि मां की गोद में जो बच्चा बैठा हुआ है मेरी गोद पे आ जाए, तो वो कहता था नारायण मम्मी की गोद में तो तुमने बहुत समय हो गए बैठे हो, मेरी गोद पे आ जाओ। जिस समय वो अपने अंक में धारण करने के लिए पुकारा करता था, प्रभुपाद जी कहते हैं उसी समय वो पवित्र हो गया था। एतेनैव यगोनस्य कृतम स्याद अघनिष्कृतम, जिसके भीतर पाप होता है उनको अघन कहते हैं। देखो अघुन शब्द आया है, अघुन इतना पाप है, अघवंत पाप बंत अघुन, केवल नारायण नाम से ही इतना हो गया। कृतम स्याद अघनिष्कृतम यदा नारायण आयति, इतना ही कहा हे नारायण, बस इतना ही इसका रहस्य है। जरा विचार करके देखिए प्रभु पाजे ने कितनी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अजामिल सबसे पहले निरपराध होकर के नाम लिया, क्यों? क्योंकि नाम लेते समय छठे नंबर अपराध क्या है कौन कहेगा? हाँ जी, नाम पर अर्थवाद का आरोप करना। ये अर्थवाद क्या होता है जी? अर्थवाद क्या है? हाँ? यस, काफी भक्तों के भीतर यह अर्थवाद स्पष्ट नहीं है। न्याय शास्त्र में अर्थवाद के बारे में कहा गया कि कुछ ऐसी बातें कहो जिस बातों को सुन करके वो लक्ष्य के प्रति दौड़े, ध्यान देना, ऐसी कुछ बातें कहो जिन बातों से प्रभावित होकर के वो करने वाला उस लक्ष्य के प्रति दौड़े, उस कार्य को करने के लिए ज्यादा प्रभावित हो जाए। जैसे आपको हम कहेंगे यदि तुम यहां 8 से 9 बजे तक बैठोगे तो तुमको हम 1,00,000 रुपया देंगे, कोई नहीं हिलेगा, तो बैठ गए। तो यहां बैठना जो है आपको ये 1,00,000 प्रेरित करता है। अथवा आपको हम कहेंगे इस कमरे में 8 से 9 बजे तक बैठना, यदि बाहर जाओगे आपको पर वज्रपात हो जाएगा, कोई नहीं जाएगा, चाहे निंदा हो चाहे स्तुति हो, ये दोनों अर्थवादी है। अर्थवादनम इसको अंग्रेजी में कहते हैं, मोनेटराइजिंग इसको क्या अंग्रेजी में कहते हैं, कुछ कुछ दिखाना, सामने कुछ हिलाना है ना, उसको दिखा करके उसको अट्रैक्ट करना, अर्थवाद। मिस इंटरप्रेट, कई भक्त लोग इसको मिस इंटरप्रेट, नहीं 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 नहीं, इसका इधर उधर का अर्थ नहीं, कुछ लालसा दिखा करके नाम जप के लिए प्रेरित कर देना, इसी का नाम है अर्थवाद। प्रभुपाद जी इसको लिखे हैं यहां साफ साफ में कि भाई उसने नाम के बल पर पाप को नष्ट करना है, इस भाव से उन्होंने नाम नहीं लिया। उन्होंने नाम लिया कि बेटा नारायण, बस सांकेत्यम पारिहासम हेलेन स्तोभमे व्यवहार, संकेत मात्र, उसके बेटे का नाम था नारायण। हम भारतवासी कितने अच्छे हैं, नाम अपने आप पिता माता नाम रख देते, मुकुंद हरि गोविंद, गांव में चले जाओ, शहरों में, पर शहरों की संस्कृति आजकल पाश्चात्य जगत से प्रभावित हुआ इसलिए नाम रखे अटपटंग नाम रखने लगे, लेकिन इनको पता नहीं है कि वो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कम से कम यदि अजामिल उपाख्यान सुनेंगे तो अटपटंग नाम नहीं रखेंगे, वो तो कहेंगे किसी बहाने हम तो नाम तो ले रहे हैं। पानीपत अभी हम गए थे, वो एक घर में गृह प्रवेश था रामनवमी के दिन, उसने अपने घर में प्रतिष्ठित किया श्री राधा राधिका रमण। तो हमको कहा गया कि आप इसे भवन का नाम रखिए, तो मैंने अब वहीं बैठे बैठे हमें के नाम स्फुरित हुआ, मैंने कहा यहाँ आपने रखा राधा राधिका रमण, आपके कुटिया का नाम रहेगा श्री आनंद वृंदावन। बहुत प्रसन्न हो गए। तो आनंद वृंदावन में श्री राधिका रमण विराजमान करेंगे, इससे सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं आनंद वृंदावन पहुंचना चाहता हूं, इतने में उसके प्राण चले जाएं, तो सचमुच आनंद वृंदावन में पहुंच जाएगा। यही है भारत की संस्कृति है, अजामिल उपाख्यान। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये श्लोक उद्धार करते हैं, बोले नामो ही यावती शक्ति ही पाप निरहरणे हरे है तावत कर्तुम न सकनोति पातकम पातकी नरह। बोले एक जन्म में नहीं, अनेक अनेक जन्मों में यदि वो व्यक्ति पाप करना चाहे और जानबूझकर के पाप करे भी, जानबूझकर के पाप करे, बोले उसकी उतनी सामर्थ्य नहीं है कि एक नाम में जितनी शक्ति है, एक नाम में जितनी शक्ति है वो पाप जलाने की, वो व्यक्ति पूरे प्रयास करके अनंत अनंत जन्मों में उतना पाप इकट्ठा कर ही नहीं सकता। ये नाम की शक्ति है। गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या, ये पुराणों में ये श्लोक आया है, गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या प्रयाग गंगोदक कल्पवास यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तने समम शतांशी। इस श्लोक का अर्थ है गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य। जब सूर्य चंद्र ग्रहण काल में रहते हैं, उस ग्रहण योग में वाराणसी जाकर 1 करोड़ गाय जिनके सिंग सोने के पत्रे से मढ़ी हुई है, ऐसे ही दूध दुधारू और स्वर्ण से सुसज्जित 1 करोड़ गायों का आप दान करते हैं और जितना पुण्य होता है आप उसको इकट्ठा करते हैं। गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवासः। बोले ब्रह्मा जी का जो 1 दिन है, जितना समय है, एक ब्रह्मा जी के 1 दिन में 14 मनु आते हैं और जाते हैं, 14 इंद्र आते हैं और जाते हैं। 1 युग का जो समय है, ये 1 चतुर्युग का समय है 43,20,000 बरस, और वो 43,20,000 बरस में 1,000 गुणा करिए, जितना समय होगा उतना समय आप प्रयाग भूमि में निवास करके गंगा समुद्र यमुना के स्थल में संगम में स्नान करके पुण्य अर्जन को इकट्ठा करेंगे। जितना पुण्य होगा गायों को दान करेंगे 1 करोड़, जितना पुण्य होगा उसको रखिए, और गंगोदक वास 1 कल्प तक जितना पुण्य होगा उसको भी पास रखेंगे। और क्या रखेंगे? बोले यज्ञायुतम, बोले 1 आयुत यज्ञ करिए मथुरा वृंदावन में, अश्वमेध यज्ञ, उसका जितना पुण्य होगा पुण्य फल उसको भी अपने पास रखिए। इतना नहीं, मेरु सुवर्ण दानम, मेरु पर्वत का आकार जितना बड़ा है उतनी मात्रा में सुवर्ण का दान ब्राह्मण वैष्णवों को करिएगा। ये सारे पुण्यों का फल को इकट्ठा करके तराजू के 1 पलड़ा में डाल दीजिएगा। थोड़ा हिसाब करते रहिएगा, 1 करोड़ गाय दान का पुण्य और एक कल्प प्रयागवास के पुण्य का फल और एक आयुत माने 10,000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल और मेरु पर्वत जितना बड़ा है उतने आकार का सुवर्ण दान का फल उसको इकट्ठा करके तराजू के एक पलड़े में डाल दीजिए। तो शास्त्रकारों ने कहा ये जितना फल नहीं होगा केवल तुलसी के पत्ते में एक नाम लिख दीजिए गोविंद, वो पलड़ा भारी हो जाएगा। यदि केवल तुलसी के पत्ते में गोविंद लिख करके उसको तराजू के दूसरे पलड़ में डाल दोगे तो ये पलड़ा भारी हो जाएगा और ये सारे पुण्य ऊपर उठ जाएंगे। गोविंद कीर्तने समम शतांश ही बोले भारी नहीं, उसके 100 भाग से एक हिस्सा जितना होता है उसकी बराबरी भी नहीं कर सकते ये सारा पुण्य। जरा विचार करके देखिए कि नाम की कितनी ताकत है। और वो कथा ये अजामिल के उपाख्यान में है, भगवान कितने दयालु है, वो नाम में ही अपनी शक्ति रख दी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो यही बात, ये तो शास्त्र का प्रमाण हमने आपको दिया, अनेक अनेक नाम की महिमा, अनेक अनेक नाम की कथा यही है। पर साक्षात भगवान नाम की महिमा क्या कहते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु ने नाम की महिमा कही, बोले नाम, वो नाम और नामी में भेद थोड़ा ही ना है। रामस्य नाम रूपोयम धाम लीला चतुष्टयम्। श्री राम के नाम रूप लीला धाम, रामस्य नाम रूप लीला धाम परात्परम एतच्चतुष्टयम् नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। बोले श्री राम के नाम रूप लीला धाम ये राम से अलग नहीं है, जो राम है उनके नाम रूप लीला धाम वही सच्चिदानंद विग्रह ही है। यहां विष्णु दूतों ने नाम की महिमा, नाम महात्म्य की महिमा प्रकट करी, साक्षात श्री भगवान कैसे नाम महिमा प्रकट करते हैं उसको भी सुन लीजिए। भगवान के मुखारविंद से सुनोगे और ज्यादा पुष्टि हो जाएगी। भक्तों ने तो ऐसी बात कही, साक्षात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जब अवतरण हुआ था उन्होंने तो खूब नाम लिया और नाम की बड़ाई करी और उन्होंने नाम की महिमा भी कही। शिक्षास्तक में नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति स्तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालो एतादृशी तब कृपा भगवन ममापि दुर्देवमिदृशमिह जनिनानुराग। धिक्कार है मुझे, मेरे भीतर उस नाम लेने के लिए आग्रह ही नहीं हो रहा है। ये संसार के नाम और भगवान के नाम में यही अंतर है। आप यहां पर पारिवारिक कोई व्यक्ति बैठा हुआ है जिनकी पत्नी इधर बैठी हो, है कहीं हाथ उठाइए, कोई नहीं है जिसकी पत्नी इधर बैठी हो, आप बैठे हो, आप इसे हॉल से बाहर निकल करके आपके पत्नी के नाम लेकर के बुलाइए, पत्नी आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि आपके पत्नी का नाम आपकी पत्नी बिल्कुल डिफरेंट है। हो सकता है कि नाम अगर उनको सुनाई दे वो आ जाए, लेकिन नाम जब तक सुनाई नहीं देगा आपकी पत्नी आपकी बात को नहीं सुन पाएगी, आपके पास नहीं आ पाएगी। लेकिन भगवान, भगवान का नाम, उस नाम में ठाकुर जी बैठ गए हैं। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति है, ठाकुर जी का ये नाम ठाकुर जी से अलग नहीं है। ठाकुर जी कह रहे हैं मेरे नाम पे मैं बैठा हुआ हूं, देखो तुम नाम निरूपण नाम जतन थे सौ प्रगट जिमी मूल रतन थे। बोले हीरा का कीमत, हीरा के कीमत सामान्य व्यक्ति को पता नहीं है, वो जोहरी को पता है कि ये कितने कीमत वाला हीरा है। तो नाम जो नामी लेते हैं, नाम नाम साधक के भक्त लेते हैं, उनको पता है भाई इसमें कितनी ताकत है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नाम की ऐसी महिमा कही। चैतन्य महाप्रभु के अनेक भक्त हैं, उनमें से एक भक्त था बंगाल का राजा सुबुद्धि राय, अपने नाम सुना होगा, वो शासक था, पर उनके अंडर एक सेवा करने वाला मुसलमान था जिनका नाम था सैयद हुसैन खां। क्या नाम था? सैयद हुसैन खां। वो मुसलमान था। एक बार सुबुद्धि राय ने उस मुसलमान हुसैन खां से कहा, यहां एक बड़ा सरोवर खुदवाना है, पानी की कमी है। हुसैन खां ने कहा, जनाब हम खुदवा देते हैं, ठीक है, ये इस काम की ऐसे ठेका जो है तुमको दिया गया, करो। पर आपको पता है मुसलमान ज्यादा ईमानदार होते नहीं है। नाम तो है कि भाई मुसलमान ईमानदार, जिनके ईमान हो भगवान में अल्लाह में, वो मुसलमान ही होता है, लेकिन ईमान की बड़ी कमी होती है। तो उन्होंने जो भी गड़बड़ किया, सुबुद्धि राय ने खूब पिटाई करी उसकी, और इतनी पिटाई करी उसके पीठ पर निशान पड़ गई, खूब पिटाई हुई उसकी, जिस किस कारण से भी हो। पिटाई के बाद फिर भी वो सेवा करता था, पर वो ईमानदार सेवक था, सेवा करता था। आगे चलकर के उनका विवाह हो गया, तो विवाह हुआ एक मुस्लिम स्त्री से, उनका बेगम साहिबा। पर समय का फिर समय का चक्र बदल गया, ये सुबुद्धि राय राजगद्दी से हट गया, और उसी राजगद्दी पर ये सैयद हुसैन खां बैठ गया। यही तो होता है मेरे मित्रों, अभी नहीं जगोगे तो एक दिन तुम्हारी जगह पर कोई दूसरा बैठ जाएगा, बिल्कुल बैठ जाएगा। इतिहास का पुनरावर्तन होता है। सुबुद्धि राय की जगह पर बैठ गया शेख सैयद हुसैन खां। जब बैठ गया सुबुद्धि राय क्या करता, एक दिन ये चक्रवर्ती था और ये था सेवक, और अब ये बना मालिक और ये बना सेवक। बेगम साहिबा के साथ जब रंग क्रीड़ा करता था ये सुबुद्धि, ये हुसैन खां, तो उनकी पत्नी ने, बेगम साहिबा ने देखा, जनाब आपकी पीठ पर ये कोड़ों के निशान है, किसने कोड़े मारे थे? उसने कहा, सुबुद्धि राय ने मुझे कोड़े मारे थे। इतनी हिम्मत उसका, तुम्हारी पीठ पर कोड़े मारे? मैं चाहती हूं यदि सचमुच तुम मुझे प्यार करते हो, इसी समय उसकी हत्या करवा दो। सैयद हुसैन खां ने कहा, मेरा मालिक है वो, उसकी हत्या करना ये जायज बात नहीं है। पर बेगम ने कहा, यदि तुम उसको नहीं मारोगे, तेरे सामने मैं मरूंगी। क्या करता, उपाय क्या है? फिर भी इसने मना कर दिया। बोला, ठीक है, यदि आप उसको नहीं मरवाओगे अथवा नहीं मारोगे, तो उसकी जात ले लो, उसको मुसलमान बना दो। सैयद हुसैन खां ने कहा, यदि मैं इसकी जात भी लेता हूं, पर यह जीवित नहीं रहेगा, यह जिंदा नहीं बचेगा। पर इसने कहा, किसी भी प्रकार से, किसी भी सूरत हाल में आप इसकी जात ले लो, इसको मरवा दो, नहीं तो तेरे सामने हम जीवित नहीं रहेंगे। कविराज गोस्वामी लिखते हैं, पत्नी की हठ बहुत ही जबरदस्त होती है। अब ये क्या करता, इधर मालिक और इधर मालकिन, अपने मालिक और इधर मालकिन, मालकिन की बात माने या मालिक की बात माने? अब वो तो मालिक तो हट चुका था, अभी दास था। उसने क्या किया, प्रभुपाद जी ने लिखा है, यही है हिंदू धर्म का दोष। ये हिंदू धर्म इतना कट्टरवाद में ग्रसित हो चुका था, वर्तमान भी है, कि उस समय मुसलमान के पात्र से कोई पानी लाकर के किसी मुंह में छिड़क ऐसे छिड़का देता था, वो आदमी के अंदर ये भ्रम पैदा हो जाता था कि अब मैं मुसलमान हो गया। इसी के चलते काफी दलित हिंदू मुसलमान बन गए। प्रभुपाद जी कहते हैं इस प्रसंग में कहीं ना कहीं, बोले ये हिंदूवाद का सबसे बड़ा दोष है कि कोई मुसलमान के पात्र का, घर का कोई पात्र का पानी लाके छिड़का दे मुंह पर, और वो आदमी के अंदर यह भ्रम पैदा हो जाता था कि वो मुसलमान हो गया। बस वही घटना हुई सुबुद्धि राय के साथ। वो सैयद हुसैन खां अपने घर के पात्र का पानी लाकर हुसैन खां के माथे पे डाल दिया, उसके मुंह में डाल दिया। अब सुबुद्धि राय को यह भ्रम हो गया कि भाई मैं मुसलमान हो गया। प्रभुपाद जी कहते हैं, तब तक बड़े बड़े लोग भी इस भ्रम से उब नहीं पाते थे। यहां तक प्रभुपाद जी कहते हैं, भारत का मुसलमान कोई बाहर से नहीं आया, यही का हिंदू मुसलमान बना है। क्या करता, पागल हो गया हो। बंगाल छोड़ दिया, वाराणसी आया, प्रायश्चित बताओ। हे द्विवेदी जी प्रायश्चित बताइए, शर्मा जी प्रायश्चित बताइए, मिश्र जी प्रायश्चित बताइए, मैं शुद्ध हिंदू हूं पर मैं मुसलमान हो चुका हूं। द्विवेदियों की गोष्ठी ने कहा तू मुसलमान बन चुका है, गरम खोलता हुआ घी पीकर प्राण दे दे। पी पाओगे गरम घी? वो किसी कोई माता अपने चूल्हे पर गरम वो घी को बिठाया और घी खोले और ग्लास में दे करके दे कि लो इसको पी करके प्राण त्याग दो, वो ग्लास ही पकड़ नहीं पाएगा, उसका रूह कांप जाएगा, नहीं पी पाएगा, बहुत डर गया। और कुछ शर्माओं के महल में गया, हाँ जी मैं मुसलमान हो चुका हूं, अब मेरे प्रायश्चित बताइए। शर्माओं ने कहा, शर्मा थोड़े कोमल होते हैं, शर्माओं ने, शर्मा माने जो शर्म करे, जिनके अंदर शर्म हो उनको कहते हैं शर्मा। शर्म माने शांति, अर्जुन जी कहते लभे न शर्मा, शर्म माने शांति, जिनके मन के अंदर कूट कूट करके शांति भरी हुई हो उनको कहते हैं शर्मा। तो उन्होंने कहा भाई ये इनका दोष अपराध बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा दोष है, ये सब इतना गर्म घी पीने की जरूरत है नहीं। उन्होंने कुछ सामान्य उपदेश बता दिया, बोला ये प्रायश्चित कर लो। अब सुबुद्धि राय समस्या में पड़ गए, ये करें या वो करें, क्या करें? जब संकट की घड़ी उपस्थिति होती है तो भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान की शरण में सुबुद्धि राय जाते हैं, उसी समय वाराणसी आ पहुंचते हैं भगवान महादयालु श्री चैतन्य महाप्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये भी बंगाल के, वो भी बंगाल के, तो महाप्रभु के साथ मुलाकात होती है। तुम्हें कुथाई थे के ऐसे छ? आमी आमी बंगाल थे के। तुम्हार नामटा की? आमार नाम सुबुद्धि राय है। तुम ही सुबुद्धि राय है? हाँ। यहां किस लिए आए हो? पूरा वृतांत कह दिया। महाप्रभु ने कहा सुनो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, तुम निरंतर कृष्ण कृष्ण कहो, तुम्हारा पाप इमीडिएटली तुरंत नष्ट हो जाएगा। महाप्रभु ने कहा एक कृष्ण नामे तुमार पाप दोष जावे, आर नाम लईते कृष्ण चरण पाईवे। महाप्रभु ने सबसे पहले कहा सुबुद्धि राय निकटे आयसो तुम्ही जाए वृंदावन, तुम बहुत नजदीक आए हो और तुम वृंदावन जाओ, निरंतर लहो तुम्ही कृष्ण कृष्ण नाम। निकटे आयसो तुम्ही जाओ वृंदावन, निरंतर लहो तुम्ही कृष्ण कृष्ण नाम, रोज निरंतर रेगुलर लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पर सुबुद्धि राय के मन में थोड़ी शंका हुई, निरंतर नाम लेंगे उससे क्या होगा? महाप्रभु भावग्राही, उनके भाव को समझ करके और हम सब के लिए पूरे संसार के लिए महाप्रभु ने कहा एक नामा भासे तुमार पाप दोष जावे, आर नाम लईते कृष्ण चरण पाईवे। प्रथम पंक्ति में महाप्रभु ने कहा एक नामा भासे तुमार पाप दोष जावे। नामा भास माने नाम नहीं ले रहा है, सांकेत्य पारिहासम स्तोभम हेलेना, ये सब नामाभास है। तुम चाहे किस भी प्रकार से हो नाम ले लो, शुरू शुरू में नाम नहीं होता, नामाभास होता है। तो महाप्रभु ने वही बात कही, इसी की पुष्टि करी एक नामा भासे तुम्हारे पाप दोष जावे। सुबुद्धि राय तुम पाप की चिंता मत करो, तुम जिस दिन पहला नाम लोगे कृष्ण तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। नाम नो ही जावती शक्ति, अब नाम की जितनी शक्ति है उतना पाप तो व्यक्ति कर ही नहीं सकता। दूसरी पंक्ति में दूसरे चरण में महाप्रभु ने क्या कहा आर नाम लईते कृष्ण चरण पाईवे। बोले जब तुम दूसरा कृष्ण नाम का उच्चारण करोगे तो तुमको कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी।
जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। महाप्रभु कहते हैं बहुत ज्यादा जपने की जरूरत है नहीं, पहले नाम में सारे पाप नष्ट और दूसरे नाम में कृष्ण चरण की प्राप्ति, बस दो नाम है। तीसरे नाम अर नाम लैते हय कृष्ण स्थाने स्थिति। बोले जब तीसरी बार तुम नाम लोगे तो तुम कृष्ण चरणों में नहीं सीधा सीधा वैकुंठ में जाकर निवास करोगे। साफ साफ महाप्रभु ने कहा आर कृष्ण नाम लैते कृष्ण स्थाने स्थिति महापात की रहय यही प्रायश्चिति। चाहे कितना बड़ा पात की तुम क्यों ना हो, तुम्हारे लिए इतना प्रायश्चित पर्याप्त है। महापातकीर है यही प्रायश्चित, चाहे कितना बड़ा, चाहे ब्रह्म हत्यारा हो गो हत्यारा हो, महापातक में से पांच पातक बहुत ज्यादा भारी होता है। परस्त्री गमन करना, सुवर्ण का सुवर्ण की चोरी कर देना, किसी की जमीन को हड़प लेना, किसी के घर में आग लगा देना और किसी को धोखा दे देना, ये पंच पातक को महापातक कहते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा तीन नाम बस, पहला नामाभास, दूसरा नाम और तीसरा नाम। पहले नामाभास में सारे पाप मिट जाएंगे, दूसरे नाम लेते ही कृष्ण चरण की प्राप्ति हो जाएगी और तीसरे नाम लेते ही कृष्ण चरणों में स्थिति हो जाएगी। मित्रों प्राप्ति और स्थिति में थोड़ा अंतर है। मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपया आ गया पर आपकी जेब में नहीं रहा तो आप ज्यादा विकल हो जाओगे, है ना। प्राप्ति तो हो गई पर स्थिति नहीं हुई, तुम गए और वहां से गिर गए। महाप्रभु कहते हैं ना 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 ना, जो व्यक्ति तीन बार नाम लेगा वो कृष्ण के चरणों से गिरेगा नहीं, कृष्ण के चरणों में नित्य निरंतर निवास करेगा। ये भगवान के तीन नाम की बस, तीन नामों का प्रभाव है। ऐसा ही नाम वो सुबुद्धि राय ने, सुबुद्धि राय के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु ने नाम महिमा की प्रकट कर दी। हरिदास ने नाम लिया, कहां तक कहे, संतों ने अनेक अनेक प्रकार की बात कही है कि यदि कोई व्यक्ति किसी संकट की घड़ी में यह नाम लेता है तो उनके सारे संकट मिट जाते हैं। सारे संकट जपही नाम अति आरत भारी, जपही नाम जन आरत भारी, मिटही कुसंकट हो ही सुखारी। संत ने कहा यदि आपत काल में विपत्ति काल में व्यक्ति हरि नाम लेता है, जप ही नामो जन आरत भारी, बहुत भारी विपत्ति आई है, बहुत भारी विपत्ति आई है, यदि उसने नाम लिया है, संत यहां वचन देते हैं मिटई कुसंकट हो ही सुखारी, उनके सारे संकट मिट जाते हैं और वो व्यक्ति सुखी हो जाता है। और वही स्थिति अजामिल की है, बड़ी दुखद स्थिति है। यमदूत आए हैं लेने के लिए, फंदा लगा दिए, अब भयंकर यातना से बचने का कोई उपाय नहीं था, लेकिन केवल उन्होंने नारायण नाम लिया, जिस नारायण नाम के प्रभाव से उनका उद्धार हो गया और हमेशा के लिए हम सब के लिए, सभी विश्व जनता के लिए, ये विश्व जनता के दरबार के लिए ये संदेश को रखा गया है। वेदव्यास ने ये संदेश को रखा है कि आने वाली पीढ़ी, आने वाली सभ्यता यदि इन्हीं भागवत का आश्रय करता है, इन्हीं भागवत के आश्रय से प्रकाश को प्राप्त करके नामाश्रय करता है, नामाश्रय करी जतने तुम्हें थक अपन काजे, यदि भगवान नाम का आश्रय करता है तो निश्चित निश्चित रूप से उनके भारी भारी संकट टल जाएंगे और वो जीवन में सुखी हो जाएगा और भगवान के चरणों को प्राप्त करके कृत्य कृत्य हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्णा। इसी श्लोक के टीका में श्रीधर स्वामी ने अर्थवाद पर बहुत भारी विचार किया है, उस पर हमने विचार नहीं किया इसलिए, क्योंकि बहुत भारी पड़ता, ऐसे व्यक्तिगत रूप से चर्चा की जा सकती है, अर्थवाद क्या है, न्याय शास्त्र क्या है, किस प्रकार से उन्होंने अजामिल को ये फल मिला है, आप पढ़ सकते हो। सबसे ज़्यादा श्रीधर स्वामी की टीका इसमें भारी है, बाकी सबकी टीका बहुत ही सामान्य है।
कोई प्रश्न है? हाँ यस बोलो। हाँ हाँ, परसों दिन नहीं सुना, वृंदावन चंद्र प्रभु महाराज ने कहा था कि ये यमराज जी की भारी गलती थी। अच्छा एक्चुअली यमराज जी की क्या गलती, इसका भाव यही है, आप कभी नहीं समझना चाहे कि महाभागवतों की ये गलती है। नहीं गलती है। क्यों नहीं गलती है? हमेशा भगवान अपने भक्तों के माध्यम से गलती करवा करके सिखाने के लिए करवाते हैं, है ना। जैसे हमने एक दिन कहा था सती ने इस तरह से किया, नहीं ये सब गलती नहीं करते, भरत महाराज ये सब गलती नहीं करेंगे, पर महाभागवत के माध्यम से भगवान ये लीला संपादन कराते हैं। तो उन्होंने अपने भागवत अपने यमराज जी के माध्यम से ये गलती करवा करके सिखाया कि भाई अगर ये गलती यमराज से नहीं होती तो ये उपाख्यान का प्रादुर्भाव कैसे होता, ये नहीं होता। इसलिए ये गलती नहीं माननी चाहिए, ये भगवान की लीला माननी चाहिए। जैसे पांडवों को दुख आया, ये पांडवों का दुख उनके कर्मों के कारण नहीं है, पांडवों पर जो आफत आई है जो विपत्ति आई है ये भगवान की लीला है, उनके माध्यम से ऐसा ही सिखाया गया। नहीं तो नित्य मुक्त नित्य भक्त जो है उनके जीवन में ऐसा होता नहीं। और क्या हाँ 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 नष्ट हो गए थे ना, इसलिए सारे पाप नष्ट हो गए थे उसके। हाँ हाँ कह तो रहा उसके पाप थे नहीं, ये यमराज जी की गलती थी, है नहीं। केवल आप ध्यान देना चाहिए इस उपाख्यान के प्रादुर्भाव के लिए, आरंभ के लिए ये सब घटना कराई जाती है, नहीं तो ऐसे ऐसे नहीं होता। एक नित्य पार्षद है वो क्यों इस तरह से करेंगे। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद।